This is VOA News coming to you by remote. I'm Gene Randall. We begin here in the United States, where the start of August brings with it the awful news from July, when pandemic deaths in the country rose by over 25,000 and doubled in 19 states. The figures come from Reuters and further erode hopes of quickly reopening the American economy. The country recorded nearly 1.9 million new COVID cases in July, pushing the total infection number to about 4.6 million at a cost of more than 153,000 lives. Some outdoor testing sites in virus-ravaged Florida are shutting down in anticipation of Hurricane Isaias. Meanwhile, the state's death numbers are setting daily records. Nearly 7,000 people in Florida have died in the pandemic. The case count in the state now tops 470,000. Worldwide, the Johns Hopkins University numbers put the COVID case infections at 17.6 million, with fatalities approaching 681,000. There has been another stunning set of numbers in India. More than 5,700 COVID infections in the latest 24-hour period, pushing its caseload to almost 1.7 million. Well over half those infections happened in July. Mexico now has the third largest death toll, just under 47,000, trailing only the United States and Brazil. Mexican health officials yesterday said the country had recorded close to 700 new fatalities. Vietnam suffered its first COVID-19 death this week. Now a third victim has died in the city of Da Nang, which has become a hotspot, reporting more than 100 new cases today. COVID is again spreading in Hong Kong. The semi-autonomous Chinese territory says it found 100 new corona cases today. City authorities have reimposed dining restrictions and face mask requirements. In South Korea, the elderly leader of a religious sect has been arrested after being linked to more than 5,000 of the country's 14,000 COVID infections. He's charged with underreporting religious gatherings. More news online at voanews.com. Via remote, this is VOA News. British Prime Minister Boris Johnson says he's putting off plans to further ease lockdown conditions in the UK. Johnson says there is evidence that the prevalence of COVID-19 in the community is likely rising for the first time since May. Britain has lost upwards of 46,000 lives to the pandemic. With the issue of enforcement still hanging, U.S. President Donald Trump says he is banning TikTok in the United States, after failing to pressure the short video app's Chinese owner to sell it. At issue, apparent national security concerns over how TikTok handles personal data. Losing its U.S. market would represent a major blow for ByteDance, one of the few truly global Chinese conglomerates, thanks to TikTok's commercial success. Reuters reports that ByteDance's valuation expectations for TikTok exceeded $50 billion and that the company insisted on retaining minority ownership. It seems both ideas turned into dead ends. TikTok has up to 80 million active monthly users in the United States. The U.S. has ratcheted up its economic pressure on China over its treatment of ethnic minorities, notably Uyghurs in far western Xinjiang province. It is the latest sign of badly frayed U.S.-China ties and comes after the Trump administration closed the Chinese consulate in Houston, Texas, prompting Beijing to force last weekend's shutdown of the U.S. consulate in Chengdu. The U.S. says it has blacklisted the Xinjiang Production and Construction Corps, known as XPCC, along with its former party secretary and the current deputy secretary. China denies minority mistreatment and says the camps holding large numbers of Uyghurs provide vocational training needed to fight extremism. Washington's action freezes any U.S. assets of XPCC and generally prohibits Americans from dealing with it. Trump administration officials in Congress have yet to agree on another COVID-19 economic relief bill, though the White House may be edging closer to accepting Democratic demands that jobless Americans keep getting supplemental unemployment benefits of $600 a week, which are expiring. Since so many Senate Republicans are opposed to the extension, it would have to pass on the strength of Democratic support. It is unclear if there are negotiations this weekend. South Korean tech giant Samsung says today it's ending operations at its last computer factory in China, the latest manufacturer to shift production from the world's second largest economy. This as many companies rethink their production and supply chains amid rising Chinese labor costs, the U.S.-China trade war, and the effects of the COVID-19 pandemic. The Samsung factory involved shipped $4.3 billion worth of goods out of China in 2012. By 2018, that figure was just $1 billion. More news online at voanews.com. Via remote, I'm Gene Randall, and this is VOA News.
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं यास्मीन जमील, ईद उल अजहा के खसूसी शो के साथ। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कुछ नौजवान गुलकारों से पाकिस्तान के, और उनको इनवाइट किया है हमने आज के शो में रंग भरने के लिए मौसीकी का। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद से अदनान रजा, जो एक नौजवान गुलकार हैं और खासे बहुत ज़्यादा मकबूल हैं नौजवानों में भी और दूसरे लोगों में भी। तो उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो COVID-19 के दौरान अपने मौसीकी के शौक़ को और मौसीकी के शोबे को और मौसीकी के प्रोफेशन को किस हद तक अपने साथ लेकर चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान रजा साहब।
वालेकुम अस्सलाम।
बेहद शुक्रिया
जी,
मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का। बताइए कि कैसा जा रहा है ये पीरियड, जो कि बहुत ही तकलीफों का, बहुत ही परेशानियों का दौर है COVID-19 का, और कोई अच्छी खबर कहीं से भी नहीं आ रही, और म्यूजिक का शोभा तो बिल्कुल ही मांद पड़ता हुआ दिखाई दिया है। तो आपने क्या किया और क्या कर रहे हैं?
जी बिल्कुल, आपने सही कहा, और स्पेशली म्यूजिशियंस के लिए और सिंगर्स के लिए और जो साउंड ऑपरेटर्स, टेक्नीशियंस, स्टूडियो वर्कर्स जितने भी हैं, सबके लिए बड़ा मुश्किल टाइम है, क्योंकि जो है हमारा जो परफॉर्मिंग आर्ट है, हम तो जो कॉन्सर्ट्स वगैरह करते हैं उसमें तो हमें मतलब क्राउड को इकट्ठा करना होता है और वो बहुत जरूरी है, तो वो सब सिस्टम तो अब नहीं रहा, वो गैदरिंग नहीं हो सकती, उस तरह शोज नहीं हो सकते, तो लेकिन ये कि एज एन आर्टिस्ट आपको अपना काम तो करना होता है। तो आपने देखा होगा कि डिफरेंट इंटरनेशनल जो आर्टिस्ट हैं वो तो ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स भी आजकल कर रहे हैं, तो ये है कि इस दौरान हमने अपना मतलब है कि जो काम जो है वो जारी रखा, तो कंपोजिशंस वगैरह और कुछ नए गाने जो हैं वो उस पे वर्कआउट हमने कर लिया, और ऑनलाइन कुछ जो है वो म्यूजिक हमने डिफरेंट सॉन्ग्स का जो है वो मैंने बनवाया। तो ये है कि इस टाइम को हमने अच्छा यूटिलाइज किया, क्योंकि घर पे थे, तो जब घर पे होता है तो इंसान फुली फोकस कर सकता है म्यूजिक पे, तो ये है ही, म्यूजिक है ही सुकून का काम है, तो जब आप बिल्कुल सुकून में हो थोड़े और मतलब आपका काम से आपका थोड़ी सी फरागत होती है, तो आप जरा बेहतर तौर पे काम कर सकते हैं। तो इस दौरान हम कुछ नए सॉन्ग्स पे काम चल रहा है, तो इंशाल्लाह ये जल्द हम इस क्राइसिस जब निकलेंगे तो फिर उनका जो है उनको रिलीज करने का प्लान है, क्योंकि अभी फिलहाल क्योंकि लोग उस मोड में नहीं है कि वो नए म्यूजिक को सुने या उससे लुत्फानंदोज हो सके, तो जहर है जब वो मुकम्मल तौर पर रिलैक्स होंगे तो तभी वो म्यूजिक की तरफ आएंगे, तो इंशाल्लाह होप्स हो के जल्द ये हालात बेहतर हो जाएंगे और हम इंशाल्लाह फिर से जिंदगी रवा हो जाएगी पहले की तरह।
तो हम ये कह सकते हैं कि ये COVID-19 का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये रहा और ये है कि लोगों को कंसंट्रेशन का मौका मिल गया, अपने फन पर कंसंट्रेशन करने का, और जो कुछ भी तख्लीक करने वाले थे वो या करेंगे, वो जो चीज सामने आएगी वो बहुत ज्यादा बेहतर होगी आम दिनों के जबकि वो
क्योंकि नॉर्मली जब हम काम करते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी में करते हैं यार, हाँ। के और काम करने हैं या, तो अब थोड़ा सा रिलैक्स, जहरे स्टूडियोज में भी काम कम आ रहा था, तो म्यूजिशियंस ने भी थोड़ा ज्यादा फोकस से काम किया, थोड़ा ज्यादा रिलैक्स होके काम किया, तो डेफिनेटली थोड़ा बेहतर होगा।
बेहतर होगा। तो आज ईद उल अजहा का खसूसी शो हम कर रहे हैं, तो हमारे सुनने वालों को कोई नई चीज सुनवाएंगे या कोई ऐसा नगमा जो कि आप पहले से तैयार कर चुके थे और वो हमारे सुनने वालों को महसूस करने के लिए पेश करेंगे?
एक सॉन्ग है तेरे लिए जो मैंने किया था, और ईद के हवाले से वो एक रोमांटिक सॉन्ग है, और यकीनन वो जो है हमारी ऑडियंस इनको पसंद आएगा, तो वो आज सुनवाते हैं अपनी ऑडियंस को।
लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगी अदनान रजा कि इस वक्त जो पाकिस्तान और दुनिया भर में आपको सुन रहे हैं, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन खुद कराइए ताकि उनको अंदाजा हो कि हमारा जो आज का गुलकार है वो किस हद तक आगे जा चुका है। जी
हाँ, मैंने थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं कि मैंने अपने सिंगिंग करियर का आगाज जो था वो 2009-10 में किया था पीटीवी से, और पीटीवी के लिए मैंने प्लेबैक सिंगिंग की, तो मेरा फिर पीटीवी अवार्ड्स के लिए एज ए बेस्ट सिंगर नॉमिनेट हुआ मैं, और उसके बाद फिर मैंने डिफरेंट चैनल्स पे भी काम किया, मॉर्निंग शोज में भी काम किया, लाइव शोज में भी कॉन्सर्ट स्टार्ट किए, डिफरेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन के जो थे वो कॉर्पोरेट इवेंट्स भी मैंने किए, और फिर मैंने अपने प्राइवेट सॉन्ग्स बनाना शुरू किए, म्यूजिक वीडियोज बनाई, और ये सिलसिला जारी है, फरवरी तक तो जारी था। तो अब इंशाल्लाह दोबारा से जब हालात बेहतर होंगे तो मजीद जो है वो काम, कुछ मैंने प्रोजेक्ट्स जो है वो डिफरेंट वो हैं तो पाइपलाइन में, तो वो उनको रिलीज करेंगे। तो एक छोट दो लाइंस जो है वो मैं अपने ऑडियंस को डेडिकेट गा के करना चाहूंगा
जरूर
ईद के हवाले से।
जरूर
लेकिन ये है कि जो 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 इस गाने के लिरिक्स हैं वो अब पॉसिबल नहीं है, तो ये बेसिकली मैं ये गाकर उनको ये मना कर रहा हूँ कि ये नहीं करना हमने। ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए, रस्म में दुनिया भी है मौका भी है दस्तूर भी है, ईद का दिन है गले तो ये हमने नहीं करना।
सही बात है। अब तो वरना कहा जाता था कि मौका भी है दस्तूर भी है, तो अब ना मौका है ना दस्तूर है।
ना दस्तूर है, हाँ बिल्कुल, सब सब कुछ बदल गया, किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसा।
बिल्कुल। तो चलिए अब आज के COVID-19 के दौर में जो दस्तूर में है वो सुनाइए हमारे सुनने वालों को, कम से कम थोड़े से रिलैक्स हो जाए, जो फ्रस्ट्रेशन है जो परेशानियां हैं वो थोड़ी सी कम हो जाए आज
हाँ
ईद के मौके पर उनकी।
चलिए, एक मैं बड़ा लाइट सा गाना अहमद रुश्दी साहब का, वो थोड़ा सा लाइव सुनाता हूँ आपको। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। को करीना को करीना को करीना को करीना, झील सी गहरी आंखें जिसकी फूल से जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन बन के देती है जिसपे पहरा। झील सी गहरी आंखें जिसकी फूल से जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन बन के देती है जिसपे पहरा। मैं पूछूंगा दिल से दुनिया भर में कौन है ऐसा हसीन, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। को करीना
वाह वाह, तो सुनने वालों को यकीनन अंदाजा हो गया होगा कि अदनान रजा अब किस लेवल के गुलुकार हैं। माशाल्लाह बहुत खूब, आपने अहमद रुश्दी
थैंक यू
को,
सो मच मैम, थैंक यू सो
अहमद
मच।
रुश्दी की याद को भी ताजा किया और अपने फन का भी मुजाहरा बड़े अच्छे अंदाज में कर दिया। और कुछ
बहुत शुक्रिया।
आपके जो कंपोजिशन में आपने मुझे एक नगमा भेजा है, हम इस वक्त अपने सुनने
जी जी
वालों के लिए वो नगमा पेश करते हैं। इसका बैकग्राउंड क्या है इस नगमे का?
ये गाना मेरे स्टार्ट के जो मैंने सोलोस किए थे उनमें से एक था, और ये गाना बेसिकली मैंने खुद ही लिखा था और इसे खुद ही कंपोज किया था। और फिर मतलब मेरा प्लान था, दोस्तों से मैं डिस्कस करता था कि यार ये गाना गाना, तो मुझे कहते थे यार ये गाना मीन्स कि बड़ा अच्छा सिचुएशनल सॉन्ग है, लेकिन ये इस पे ना करें आप, ना इन्वेस्ट ना करें। मैंने कहा यार नहीं, जो चीज दिल को अच्छी लग रही है तो उस पे तो वही आर्टिस्ट को तो उस पे काम करना चाहिए। तो फिर मैंने इसको रिकॉर्ड किया, जब रिकॉर्ड किया तो बड़ा अच्छा रिजल्ट इसका बना। तो फिर इसका वीडियो हमने किया, और इस्लामाबाद में डिफरेंट लोकेशंस पे हमने इसका वीडियो शूट किया था।
अच्छा
और हमारी जो लिसनर्स हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि वो मेरा यूट्यूब चैनल है अदनान रजा ऑफिशियल के नाम से, तो उस पे मेरे डिफरेंट सॉन्ग्स हैं और मेरा कंप्लीट काम वहां पे मौजूद है। तो वो लाजमी जो है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और जो है वो आप वहां पे मेरे तमाम सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं। तो तेरे लिए जो है वो अभी जो मैंने सॉन्ग आपको भेजा था, तो ये यकीनन हमारे लिसनर्स को पसंद आएगा।
तो हम ये सॉन्ग इस वक्त अपने सुनने वालों को सुनवाते हैं। ये था नगमा, अदनान रजा ने खुद ही कंपोज किया और लिखा भी खुद,
हाँ जी, ये गाना मैंने लिखा भी खुद।
लिखा भी खुद माशाल्लाह। तो ज्यादातर आप नौजवानों में मकबूल हैं कि हर उम्र के लोग आपको पसंद कर रहे हैं?
असल बेसिकली मैं वर्सेटिलिटी पे बिलीव करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मुझे हर तरह की जो ना हर एज के लोग सुने, तो मैं इसलिए अपने सॉन्ग्स में ना वेरिएशंस लाता रहता हूँ। कुछ गाने मैं बिल्कुल जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बनाता हूँ, कुछ मैं अभी एक गजल पे काम कर रहा हूँ, मोमिन खान मोमिन की गजल थी, असर उसको जरा नहीं होता, वो उसको उसको कंपोज हमने किया है और उसको उसका म्यूजिक बनाया है, उसको रिलीज करें तो उसको वो जो है जो ऐसा हल्का है जो अच्छी शायरी को सुनने वाले लोग हैं और जो क्लासिक्स को सुनने वाले लोग हैं, तो उनके लिए भी कुछ साथ साथ मैं बनाता रहता हूँ। तो डिफरेंट, ये कोई टारगेट ऑडियंस हर गाने में डिफरेंट होती है, तो उस लिहाज से चलता हूँ। कभी एक गाना मैंने सराइकी किया है, तो वो उसमें टारगेट ऑडियंस कुछ और है जो जो थोड़ा डांस करना और ये सब भंगड़ा वगैरह करना पसंद करते हैं, तो वो उनके लिए बनाया है। तो बस डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं।
और यही एक्सपेरिमेंट्स कभी कभी फिर उस सूरत में जाहिर होते हैं कि जब आपको 2014 में पीटीवी अवार्ड के लिए नामजद किया गया
एग्जैक्टली
था।
एग्जैक्टली, वो तो बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड था और मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि शफकत अमानत अली साहब जैसे लोगों के साथ मैं नॉमिनेट होऊंगा, तो वो बहुत मेरे लिए एक सरप्राइज था बड़ा। तो वक्त के साथ फिर इंसान को उन लोगों की कदर आती है। मुझे उस वक्त जब मैं नॉमिनेट हुआ तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि यार ये तो कोई, मुझे सारे कहते यार बहुत बहुत बड़ी बात है, मैं कहता नहीं यार इतने अच्छे आए। बाद में जब मुझे अब अंदाजा हुआ कि वाकई ये अचीवमेंट्स कुछ जो आपको जल्दी मिल जाती है उनकी कदर आपको बाद में जो है ना उसकी महसूस होती है।
तो कितना अरसा हो गया आपको इस फील्ड
मैंने प्रोफेशनली स्टार्ट 2010 में किया था, लेकिन उससे पहले मैं स्कूल कॉलेज से, मैं जो था ना म्यूजिक से मेरा इंटरेस्ट था, और मैं स्कूल कॉलेज के जो कॉम्पिटिशन होते थे उनमें पार्टिसिपेट करता रहता था मोस्टली, तो वहां से एक,
4 साल की उम्र से आप गा रहे थे सुना है?
हाँ 4 साल की एज से मैंने गाना शुरू किया था, वो भी बिल्कुल छोटा सा था। तो मैं एक अक्सर था, मैं अपनी वालदा के साथ एक दफा गाँव जा रहा था, तो जब जिस गाड़ी में गाँव हम जाते थे तो वो अक्सर वहां पे सॉन्ग्स वगैरह वो जो प्ले करते थे, तो मैं ड्राइवर से पिछली वाली सीट पे बैठा था, तो एक रफी साहब का पुराना गाना चल रहा था, खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते, तो मैं साथ गाना शुरू हो गया ना, तो वो साथ इर्द गिर्द जो लोग बैठे थे तो उन्होंने कहा यार ये बच्चा बड़ा प्यारा गा रहा है, तो उन्होंने उन्होंने कहा यार इस टेप को बंद करो उससे सुनते हैं ना, तो मैं जो ही टेप बंद होती तो मैं भी चुप हो जाता, तो फिर उन्होंने क्या किया उस टेप की आवाज थोड़ी सी जो वॉल्यूम कम किया और मुझे उन्होंने सुना, तो वो उन्होंने मेरी मेरी अम्मी मुझे डांट रही थी कि चुप करो ये लोग क्या कहेंगे कि तुम गाने गाने गाते हो, तो वो था वहां से थोड़ा सा ना था कि मतलब करंट
तो
है थोड़ा
हाँ,
सा
वाह।
म्यूजिक।
तो बस के सफर में आपके मौसीकी का सफर शुरू हुआ, और आपके पहले जो
हाँ
ऑडियंस थे, आपके जो पहले हाजरीन थे, सामीन
हाँ
थे, वो बस के मुसाफिर थे, और वहां से फिर आपका
बिल्कुल
सफर,
बिल्कुल
हाँ, सफर शुरू हो गया। और फिर तो इसकी ये अब आपने इसको एज प्रोफेशन बना लिया कि आप कुछ और भी करते हैं पार्ट टाइम?
नहीं, म्यूजिक को मैंने फिर एज ए प्रोफेशन शुरू कर दिया, क्योंकि ये फुल टाइम जॉब है, आपको हम जानते हैं कि आप फुली फोकस ना करें, आपको दिन भर मतलब एक तो फर्ज की आपने अगर कॉन्सर्ट्स करने हैं तो उसकी प्रिपरेशन होती है, फिर आपको डिफरेंट मीटिंग्स पे जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, और ये सब चीजें फिर आपको जो है वो लेटेस्ट क्या चल रहा है म्यूजिक वो सुनना पड़ता है, फिर उस टाइप का म्यूजिक बनाना पड़ता है, तो एक फुल टाइम जॉब
फुल
है,
टाइम
तो
जॉब,
आप, हाँ तो आप
ठीक,
उसको एज ए पार्ट टाइम ले नहीं
ले नहीं
सकते।
सकते। तो अदनान, आपने क्या पढ़ा, आपका फील्ड वैसे क्या था? अगर आप ये ना होते गुरुकार तो क्या बनते फिर?
हाँ मेरी असल असल में ना मेरी फील्ड जो थी वो मैं एक मेरी जो लाइफ थी वो एक कटी पतंग की तरह थी, मैंने पहले FSC प्री इंजीनियरिंग में की और फिर मैंने BSc की डबल मैथ फिजिक्स में, और उसके बाद मैंने मास्टर्स किया मैथ्स कम्युनिकेशन में, क्योंकि जब मेरा मुझे लगा कि मेरा शौक थोड़ा मीडिया की तरफ है तो मैंने मास्टर्स मैथ्स कम्युनिकेशन में किया,
कहाँ से?
तो वैसे मैंने मास्टर्स किया था नमर यूनिवर्सिटी से, तो उसके बाद जो है मेरा मुझे लगा कि मुझे अपना फोकस सिंगिंग पे रखना चाहिए, लेकिन मेरा प्रोडक्शन में भी इंटरेस्ट है और मैं मतलब है कि जो है वो प्रोग्राम प्रोडक्शन भी काफी बेहतर कर सकता हूँ, अगर मैं सिंगिंग ना करूँ तो मैं मतलब है कि प्रोडक्शन और इसी फील्ड से रिलेटेड डिफरेंट काम जो है वो कर सकता हूँ,
कर सकते हो। तो ये बड़ा
क्योंकि मैंने
एक
ये
क्रेडिट है
पढ़ा
आजकल के,
हो।
हाँ,
जी जी
नौजवानों में, कि जो नौजवान गुलूकार हैं वो सब तालीम याफ्ता हैं। एक ज़माना था कि गुलूकारों के लिए ज़रूरी नहीं होता था कि वो तालीम याफ्ता भी हों, वो अपने फ़न के माहिर होते थे, वो फ़न के पीएचडी होते थे। लेकिन
एग्जैक्टली हाँ, असल में अब आपको ना, जब अब बहुत जरूरी हो गया है, अब आपने देखा होगा कि डिफरेंट जो फैमिली से लोग हैं और जो हम कहते हैं कि जो म्यूजिक की फैमिली से लोग हैं, तो वो इतना ज्यादा नहीं इस फील्ड में। हमारे जितने भी पॉप सिंगर्स हैं ये म्यूजिकल फैमिली से नहीं है, कोई इंजीनियर्स हैं, कोई क्या है, कोई किस फील्ड से है। तो जैसे आतिफ हो गए, अली जफर हो गए, अली हैदर थे, जवाद अहमद, ये सब मतलब फैमिली से नहीं थे और इन्होंने काफी जो है वो इस फील्ड में आगे बड़ा अच्छा काम किया। तो ये आपकी गॉड गिफ्टेड क्वालिटी है, बस इसे पॉलिश करना होता है। लेकिन ये कि सीखना भी साथ साथ थोड़ा है कि आप वक्त के साथ साथ उसको सीखें भी और जो है वो
तो आपने
प्रैक्टिस
किसी को
अपनी जारी
उस्ताद
रखें।
बनाया, आपने उस्ताद बनाया किसी को मौसीकी के शोबे में?
हाँ, मैं मुसीकी के शोबे में मैं किसी एक को अपना उस्ताद इसलिए नहीं कहूंगा कि मैंने डिफरेंट लोगों से सीखा। मेरी जो बेसिक मैंने जो जो बेसिक सीखी थी वो मैंने ऑल इंडिया आर्ट काउंसिल में स्टार्ट में कुछ ऐसा मैं गया था। उसके बाद मैं जो प्रोड्यूसर है हमारे एक पीटीवी के फोरम लतीफी, बड़े अच्छे कंपोजर भी हैं, तो उनके साथ काफी वक्त अच्छा गुजरा और वो बड़े म्यूजिक के हवाले से काफी ज्यादा उनको नॉलेज है, तो उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। मैं अगर अगर किसी को अपना उस्ताद कहूंगा तो खुरम साहब को कहूंगा कि उन्होंने मुझे जो म्यूजिक की जो टेक्निकलिटीज हैं और डिफरेंट रागों का की पहचान है वो मुझे उन्होंने बताई। तो
अच्छा।
फिर डिफरेंट अरेंजर्स के साथ काम किया, डिफरेंट स्टूडियोज में काम किया, तो वक्त के साथ साथ सबसे सीखने का मौका मिला। लेकिन वो आप जैसे कहेंगे ना कि वो घंटे बंद शागिर्दी, जैसे हाथ पे वो घंटा बांधते हैं, और वो वाली शागिर्दी
अच्छा
नहीं नहीं की वो।
अच्छा तो अदनान, आप ये बताइए कि आप कितने बहन भाई हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन है?
मैं सबसे छोटा हूँ और हम तीन बहनें और दो भाई हैं।
वो क्या करते?
वो मोस्टली जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं और म्यूजिक को बिल्कुल कोई भी नहीं सुनता और ना पसंद
आपको तो
करता
सुनते हैं
है।
ना, आपको सुनते हैं?
हाँ, मुझे 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 तब उन्होंने सुनना शुरू किया जब मैंने प्रोफेशनली मेरे गाने रिलीज होना शुरू हुए, और जब मुझे उन्होंने टीवी पे देख लिया, उन्होंने कहा आप तो नहीं छोड़ेगा, तो आप चलें इसको सुन लेते हैं। लेकिन ये कि मैं घर में अगर प्रैक्टिस कर रहा हूँ या घर में कुछ मतलब कर रहा हूँ, तो वो इतना, वो कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, वही वाला सिस्टम होता है।
अच्छा। तो आपकी अम्मी कितना अप्रिशिएट करती हैं आपको?
मेरी अम्मी दुआएं मुझे बहुत देती हैं, वो कहती हैं बेटा जो भी तुम चाहते हो वो हो जाए बस। तो बाकी वो जरा म्यूजिक इतना सुनती नहीं है वो, लेकिन ये कि एप्रिसिएशन तो, और एप्रिसिएशन और जो है ना दुआएं उनकी
और
हमेशा मेरे
अब्बू
साथ होती हैं। तो मैं
अब्बू
वाले साहब, मेरी मेरी 2018 में डेथ हो गई थी,
ओ
तो लेकिन
अच्छा
वो भी यही था कि वो मुझे बड़ा अप्रिशिएट बहुत करते थे। जी, मेरा फर्स्ट टाइम जब मैं अब्बू से शर्माता बहुत था ना, तो फर्स्ट टाइम मेरा जब मैं टीवी पे मेरा सॉन्ग चला, तो मैं सारे घर वाले बैठे इंतजार कर रहे, तो अब्बू ने कहा क्यों बैठे हो जी? तो घर वाले ने कहा जी अदनान का गाना आना है तो हम इसलिए बैठे हैं। तो
अच्छा
मैं ना वहां से उठ के चला गया, मैं छुप गया था, तो अब मुझे अब्बू के सामने बड़ी शर्म आई कि अब्बू क्या कहेंगे। तो अब्बू ने कहा इसको 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 बुलाओ, तो मैं पकड़ के ले आए मुझे। तो जब मेरा खत्म हुआ गाना, तो अब्बू कहते हैं ये बड़ी बात है बेटा, ये बहुत बड़ी बात है, देखो ना ऐसे नहीं हर किसी को कोई टीवी पे आता। तो उन्होंने बड़ा मुझे अप्रिशिएट किया, बड़े खुश हुए ना,
वाह
कहते ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें शौक था ये वो। मैं बस
अच्छा
मैं तो छुप छुप के
अच्छा
लगा रहता।
अच्छा ये कहानी है
जी
अदनान रजा की जो आपने सुनाई, बड़ी इंटरेस्टिंग। और लेकिन अब ये बताइए कि क्या फ्यूचर क्या है? अब आप तो अब गुलकारी के शोबे में कदम रख चुके हैं, आप समझते हैं कि ये शोबा ऐसा है कि सारी उम्र और रिटायरमेंट भी इसमें कोई होगी, या क्या फ्यूचर क्या है इनका पाकिस्तान में खासतौर
हाँ,
पर?
मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहके आप मतलब कोई 10% ऐसे सिंगर्स होंगे जो टोटली सिंगिंग पे ही डिपेंड कर सकते हैं, लेकिन सिंगिंग के साथ आपको कुछ ना कुछ अपनी अर्निंग के लिए करते रहना चाहिए। मैं सबको यही सजेशन दूंगा कि साथ अपना पार्ट टाइम कोई बिजनेस कर लें या कोई जॉब कर लें, कुछ ना कुछ आप ना साथ वो भी करें ताकि आपका फ्यूचर थोड़ा सिक्योर हो जाए। और जैसे कि हमारे बड़े बड़े सिंगर्स हैं, उन्होंने मतलब जिन्होंने साथ कुछ किया तो वो तो सिक्योर रहे, लेकिन जब बड़े बड़े हमारे कई सिंगर्स हैं जिनका जब जब उन वो बीमार हुए या जब उनके पे बुरा वक्त आया, तो फिर वो डोनेशंस लोगों ने इकट्ठे करना शुरू कर दिया, तो वो एक बड़ी अलार्मिंग सी बात थी और बड़ी डिसअपॉइंटिंग सी बात थी। तो अब बजाय कि आप उस वैसा वक्त है, वैसे भी आर्टिस्ट को इस तरह बड़ी, क्योंकि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो किसी आर्टिस्ट को सिक्योर करेगी या आपके मुश्किल वक्त में आपको वो काम देगी, तो आपने खुद अपने आप को सिक्योर करना है और अपने जो है ना फ्यूचर के लिए प्लान करना है ताकि आप सुकून से अच्छा म्यूजिक कर सकें, क्योंकि जरा आप इकोनॉमिकली कुछ बेहतर होंगे तो तभी आप म्यूजिक भी अच्छा कर सकते हैं। जब आप किसी प्रेशर में होंगे, किसी टेंशन में होंगे और इकोनॉमिकली आपके लिए प्रॉब्लम होंगे तो फिर आप अच्छा काम नहीं कर सकें, फिर आपको जहां से बुरा काम भी मिलेगा तो आप वो करेंगे। मेरा यही प्लान है कि मैं साथ साथ म्यूजिक भी करूँ और साथ साथ कुछ जो है वो प्रोडक्शन के हवाले से भी काम
सही
करूँ।
सही। तो बस अब रुख्सत होते होते कुछ सुनाइए।
पहले मैं वो गजल जिसका जिक्र किया था वो थोड़े से मैं आपको सुना
चलिए
देता हूँ।
जरूर सुनो।
असर उसको जरा, असर उसको जरा नहीं होता, असर उसको जरा नहीं होता, रंज राहत फिजा नहीं होता, असर उसको जरा नहीं होता, तुम हमारे किसी तरह ना हुए, तुम हमारे किसी तरह ना हुए, वरना दुनिया मैं क्या नहीं होता, रंज राहत फिजा नहीं होता, असर उसको जरा नहीं होता। थैंक
वाह
यू।
वाह, असर तो बहुत हुआ है आपके इस नगमे का, हमारे सुनने वालों को जरूर पसंद आया होगा। अदनान रजा, दिल चाह रहा है कि आपको सुनते रहें सुनते रहें। आप माशाल्लाह काफी मंझे हुए गुलकार बन चुके हैं। मैंने एक दफा पहले आपको उभरते हुए फनकार कह दिया था, लेकिन आज मैं आपको मंझे हुए फनकार कह रही हूँ। आपका बहुत
बहुत शुक्रिया,
शुक्रिया।
थैंक यू सो मच मैम,
आप
थैंक यू
मज
सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी, और आप हमेशा, आपका जो प्यार और आपकी जो अप्रिसिएशन मेरे लिए बहुत मैटर करती है और आपकी रिस्पेक्ट बहुत। और सबसे अच्छी बात यह कि आप कुछ एंकर्स होते हैं जो म्यूजिक के हवाले से ज्यादा जानते नहीं है तो उनसे डिस्कशन का या उनसे गपशप का मजा नहीं आता, तो आपसे जब भी बात हुई है बहुत अच्छा लगा है बात करके, क्योंकि आप म्यूजिक से जो है आपको नॉलेज है म्यूजिक का, और आपसे गपशप हमेशा ही एक मेरे लिए भी एक जो है ना एक प्रोसेस है नॉलेज का।
आपका बहुत
थैंक यू
शुक्रिया,
थैंक यू,
और हम आपको बहुत सारी दुआओं के साथ प्रोग्राम से खुदा हाफिज कहते हैं। बहुत शुक्रिया,
अल्लाह
थैंक
हाफिज, अल्लाह
यू,
हाफिज, थैंक यू
अल्लाह
सो मच,
अल्लाह
थैंक यू।
हाफिज। दुनिया भर से अहम खबरों, दिलचस्प मालूमात और वीडियोस के लिए आप आ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, facebook.com/urdubioa और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर @urdubioa पर हमें फॉलो कीजिए।
ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाकयात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज़िए देखने सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
नौजवान गुलूकारों को जो कि अपने अपने जो उन्होंने तख्लीक किए नगमे वो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नादिर अब्बास हाशमी, जो एक गुलूकार भी हैं, कंपोजर भी हैं और एक म्यूजिक बैंड संगत भी ये चला रहे हैं पाकिस्तान में, जो कि इसकी तफसीलात ये खुद ही बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम नादिर अब्बास हाशमी साहब।
वालेकुम सलाम, और बहुत बहुत ईद मुबारक तमाम सुनने वालों को।
आपको भी बहुत मुबारक हो। अगरचे ये ईद एक ऐसे वक्त मनाई जा रही है जबकि पूरी दुनिया में ही परेशानियां हैं और बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, बल्कि हर तरह की परेशानियां हैं, ऐसे में हमने ये कोशिश की है कि परेशान लोगों को थोड़े से कुछ
बिल्कुल
लम्हात ऐसे दे दें जिसमें वो कुछ थोड़े से रिलैक्स हो सकें, खासतौर पर इस अपने ईद के मौके पर। तो वैसे आप बताइए कि ईद ये COVID-19 के दौरान मौसीकारों का और गुलूकारों का कुछ काम ज़रा बंद ही रहा, तो आपका क्या सिलसिला रहा COVID-19 के दौरान म्यूजिक का?
जी बिल्कुल, बहुत ही मुश्किल वक्त है कौम पर, कौम पर क्या पूरी दुनिया पर बहुत मुश्किल वक्त है। इस कड़ी माहौल में लोगों के रोजगार पर बहुत असर पड़ा है, स्पेशली म्यूजिशियंस और जितने भी आर्ट्स रिलेटेड लोग हैं। लेकिन क्योंकि मेरा ताल्लुक, क्योंकि आपको पता है कि एजुकेशन से भी है और मैं एक यूनिवर्सिटी से भी वाबस्ता हूँ जहाँ मैं पढ़ाता भी हूँ,
कौन सी
और
यूनिवर्सिटी से?
उसके
अपने हमारे सुनने वालों को बताइए, थोड़ा सा पहले अपना तारुफ करा दीजिए तफसील से ताकि फिर हम आगे पढ़ें।
नापा जी, नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स पाकिस्तान में एक वाहिर इदारा है जो म्यूजिक में हम 3 साल का डिप्लोमा करवाते हैं।
अच्छा।
मैं वहाँ पे म्यूजिक फैकल्टी हूँ, मैं वहाँ पढ़ाता भी हूँ।
अच्छा।
तो क्योंकि साथ साथ मेरा एजुकेशन से भी सिलसिला है तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी भी मुश्किलात नहीं आई। आई है, जाहिर है जो लोग परफॉर्मिंग आर्ट से ताल्लुक है जिनका, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, परफॉर्मेंसेस खत्म हो गई बिल्कुल, क्योंकि इज्तमा होने खत्म हो गए, लोगों का इकट्ठा होना खत्म हो गया। इस सूरत हाल में बहुत मुश्किल था कि एक म्यूजिशियन या एक आर्टिस्ट अपने काम को लोगों तक पहुंचाए, लेकिन बहैसियत एक टीचर, एक एजुकेटर के हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहा।
एजुकेशन के हवाले से आपको कोई ऐसा इकोनॉमिक मसला पेश नहीं आया?
जी।
अच्छा, तो अब ये बताइए कि वैसे आप क्या समझते हैं कि वर्चुअली तो लोग करते रहे सोशल मीडिया पर जो अपने म्यूजिक डालते रहे लोग, और खुद कुछ लोग नए म्यूजिक बनाते रहे, आपने भी कुछ ऐसा किया?
हाँ जी, हमारा एक सॉफ्टवेयर है जिसको जूम के नाम से जानते हैं, जूम। उससे ये है कि कुछ इंटरनेशनली म्यूजिशियंस जो हैं जूम पे ऑनलाइन संगत अपनी जारी रखते हैं, जिसमें मैं भी एक प्रोग्राम में मधु था, एक हमारी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम अरेंज किया था जो कि जूम के जरिए ही, 3 म्यूजिशियंस थे, 2 अमेरिका से थे, 1 मैं था, तो बयक वक्त हम तीनों ऑनलाइन थे अलग अलग जगह पर, हम तीनों ने मिलके कुछ म्यूजिक भी बनाया, जैमिंग भी की, दैट वाज ऑसम। तो इस तरह के सिलसिले वर्चुअली तो जारी रहे, जो लाइव परफॉर्मेंसेज होती हैं उससे काफी असर पड़ा।
अच्छा, तो फिर आपने खुद कोई चीज तख्लीक की म्यूजिक अपने स्टूडियो में?
जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल, मैंने 2 नगमे भी बनाए हैं, एक OST तैयार किया, एक अपना पर्सनल गाना भी बनाया। तो क्योंकि स्टूडियो में तो हर वक्त सेटअप ऑन रहता है और वहां पर काम चलता ही रहता है, कोई ना कोई किसी का गाना, किसी का म्यूजिक बनाना होता है। रिलीजियसली भी मैंने एक बहुत ही खूबसूरत लिरिक्स मेरे पास आए या हयो या कयूम के नाम से, तो इससे भी मैंने बड़ी मेहनत से एक पूरा 5 मिनट की कवाली टाइप एक चीज बनाई, एक सूफी कंपोजिशन बनाई।
अच्छा।
इट्स वेरी गुड, इंशाल्लाह उसको जरूर मैं खुद रिलीज करूंगा।
कब रिलीज करेंगे आप उसको?
इंशाल्लाह जी, इसकी ऑडियो उसका कंप्लीट है, उसका वीडियो जारी है, और जैसे ही उसका वीडियो कंप्लीट होगा, बहुत ज्यादा उम्मीद है कि जैसे ही बस ये अगले महीने तक, थोड़ा सा ये एक्चुअली कोरोना ने काफी चीजें असरअंदाज की हुई है, अब वीडियो डायरेक्टर के लिए, वीडियो के शूट के लिए जो लोग चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, कैमराज अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ी मुश्किलात आ रही है, मगर इंशाल्लाह तक बहुत ज्यादा हमको उम्मीद है कि या हयो या हम अपने सामाइन को सुना सके।
अच्छा, तो इस वक्त अब आप हमारे सामाइन को क्या सुनाएंगे?
एक बहुत ही खुशी का गाना, एक ब्राइट गाना, बहुत ही चंचल फास्ट रिदम को लेकर मैंने एक गाना बनाया है जिसका नाम मैंने जर्नी रखा है, जर्नी सफर। हाँ जी, वो मैं अपने सामने को सुनाऊंगा, बहुत ही मेहनत से बनाया, मैंने प्यार से बनाया, लिखा जो है वो भी मैंने खुद है, और इसका जो म्यूजिक बनाया है वो भी अपने स्टूडियो में मैंने खुद बनाया।
अच्छा, यानी आप उसके राइटर भी हैं और आप उसके कंपोजर भी हैं और आप उसके गुलूकार भी हैं?
जी।
अच्छा।
अब देखिए ना, एक बात यह है कि एक यूनिवर्सिटी से पढ़ने का यही फायदा है कि जब आप बिल्कुल शुरू पढ़ाई शुरू करते हैं म्यूजिक की एज ए सब्जेक्ट, नॉट एज ए हॉबी, तो जब उसको आप एज ए सब्जेक्ट लेकर चलते हैं तो आप सब कुछ लेकर चलते हैं, कंपोजिशन, हाउ टू कंपोज, हाउ टू सीक्वेंस एंड हाउ टू सिंग एंड हाउ टू गेट इन इट एंड एक्सप्रेशन कैसे उसमें लाने हैं। तो जाहिर है अब मेरी 8-10 साल की जो जर्नी है म्यूजिक की वो पढ़ने और पढ़ाने से रिलेटेड है, तो इतना तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा मैंने सीख लिया है कि ये सारा प्रोसेस होता कैसे है, तो इसीलिए लिखा भी खुद, कंपोजिशन भी खुद बनाई और स्टूडियो में बैठ कर इसकी प्रोडक्शन भी खुद की
और गुलकारी भी के साथ।
हाँ जी, गुलकारी तो जी मेरा मेजर है, सबसे पहले क्लासिकल वोकलिस्ट हूँ मैं और बाकी सब कुछ बाद में हूँ।
बाद में आपका जो बैंड है कुछ उसकी बात कीजिए, संगत बैंड, उसका क्या आजकल है सिलसिला?
संगत बैंड है जी, जो कि हम कुछ इसमें 6 अमेरिकन म्यूजिशियन है और 6 पाकिस्तानी म्यूजिशियन है और मैं उस बैंड का लीड वोकलिस्ट भी हूँ, कंपोजर भी हूँ। अब वो जो बैंड है क्योंकि दूसरे मुल्क में है, हम इस मुल्क में हैं, और कभी ये होता ये था कि हर साल कभी वो यहाँ आते थे पाकिस्तान में, कभी हम अमेरिका जाते थे, लेकिन इस साल कोविड की वजह से ना हम वहां जा सके ना वो वहां यहाँ पे आ सके। लेकिन हम ये प्लान बना रहे हैं कि जूम पे ही अगले महीने एक सेशन किया जाए जिसमें वहां के भी 6 लोग हों और हम भी 6 लोग हों, और कुछ ना कुछ वर्चुअली फेसबुक पर या यूट्यूब पर अपना एक कॉन्सर्ट करें और सामाइन को संगत में नए व्यक्तित्व हम ला रहे हैं वो सुनाए।
ठीक, तो नगमा जो आप इस वक्त हमारे सुनने वालों को पेश करेंगे ये वही नगमा है जिसकी आपने हमें ऑडियो भेजी?
जी, ये वही नगमा है जिसका नाम जर्नी है, लिखा भी खुद है, बनाया भी खुद है, बड़ी मेहनत से, बड़ा प्यारा गाना है।
ठीक, तो इस वक्त हम अपने सुनने वालों के लिए वो नगमा पेश करते हैं जो कि नादर अब्बास हाशमी ने खुद लिखा, खुद कंपोज किया, खुद गाया, खुद उसकी प्रोडक्शन की। तो लीजिए सुनते हैं।
जमाना मेरे प्यार का फसाना, मेरे दिल की सदाओं का, मैं जो हुआ दीवाना तेरी नशीली निगाहों की कातिल अदाओं का, तेरी फसाना मेरे दिल की सदाओं का, मैं जो हुआ दीवाना तेरी नशीली निगाहों की कातिल अदाओं का, ओ साजना ओ बेलिया ये क्या किया दिल ले लिया।
ये था नगमा जो नादिर अब्बास हाशमी ने खुद ही सब कुछ किया, और बहुत खूबसूरत नगमा, और ईद की मुनासबत से अच्छा लगा, हमारे सुनने वालों को भी यकीनन पसंद आया होगा। कुछ और कहना चाहेंगे नादिर अब्बास हाशमी हमारे सुनने वालों से?
बस जी, इस कठिन इस मुश्किल वक्त में सबको एक साथ रहना है, और सबसे ज्यादा एहतियात करनी है ताकि ना सिर्फ खुद इससे महफूज रहे और दूसरों के लिए भी इसका करियर ना बने। जितनी ज्यादा एहतियात हो उतनी ज्यादा करें, खुश रहें, फैमिली के साथ रहें, और इस ईद को एंजॉय कीजिए अपने घर में रहकर।
घर में रहकर सोशल डिस्टेंस के साथ। बहुत शुक्रिया नादिर अब्बास हाशमी, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। थैंक यू, थैंक यू,
बहुत शुक्रिया।
ताजा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل. آج کے خصوصی شو کے ساتھ آج ہم عید الاضحیٰ کے خصوصی شو میں آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں پاکستان کے کچھ ابھرتے ہوئے نوجوان گلوکاروں سے. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے آسما راجپوت, ایک بہت مقبول ہوتی ہوئی گلوکارہ ہیں پاکستان میں, بہت خوبصورت نغمے یہ گا رہی ہیں اور گا چکی ہیں, تو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم آسما راجپوت صاحبہ.
وعلیکم السلام, کیسی ہیں میم یاسمین, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں.
آسما بتائیے کہ کیسا کرونا کے دوران گلوکاروں کا کیا رہا, میوزک کا حال؟
سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک.
خیر مبارک.
اور تھینک یو. باقی ہے کہ کرونا کا جو ڈر ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ پوری دنیا میں, صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اس کا ڈر جو ہے وہ پھیل چکا ہے. تو اسی کے حوالے سے ابھی عید پہ بھی ہم لوگ اتنا کمفرٹ نہیں ہے کہ کسی کے گھر پہ مطلب عید ایون جا کر ملے, یا کوئی ہمارے گھر پہ بھی مطلب بہت زیادہ ابھی بھی سوشل ڈسٹینس پہ رہ کر خوشیوں کو اسپینڈ کیا جا رہا ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عید کے دوران کوئی موسیقی نہیں چلی, نہیں ہوئی
بالکل. لیکن کچھ ایسے ایپس ہیں جیسے سوشل نیٹورک کے ایپس ہیں جیسے کہ ٹک ٹاک ہے اور بیگو لائف ہے, فیس بک, اس پہ ہم لوگ لائیو آ کر اور سنگنگ کا جو ہمارا ایک کرتا ہے مطلب ہمارا جو ہمارے جو اسکلز ہیں ان کو ہم لوگ ڈیفینیٹلی شیئر کرتے ہیں اپنے فینس کے ساتھ اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ.
تو آپ کا یہ سلسلہ جاری رہا, آپ نے اپنے پرفارم کرتی رہی کچھ نہ کچھ اپنے لسنرز کے لیے؟
جی 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 بالکل بالکل ایسے ہی ہے. تھوڑے ٹائم کے لیے تو میں خود بھی بیمار ہو گئی تھی.
اچھا.
تو ایک دم سے میں جی جی بالکل میں بیمار ہو گئی تھی. میں مطلب ڈیلی فیس بک پیج پہ اپنے آ رہی تھی, آسما راجپوت کے نام سے میرا پیج ہے آفیشیل, تو اس پہ ڈیلی میں لائیو آ کے سنگنگ کر رہی تھی اور گپ شپ جس طرح سے ہوتی ہے اپنے فینس کے ساتھ. تو پھر ایک دم سے میں بیمار ہو گئی اور مجھے تو ایسا لگا کہ بس.
تو اچھا نہیں تو وہ کرونا تھا کہ بیماری تھی کچھ اور تھی, پتہ لگا پھر؟
نہیں وہ کرونا نہیں تھا.
ٹھیک ہو گئی
بے شک. ہاں جی بے شک بے شک. تو میں نے خیال گھر پہ ہی ٹریٹمنٹ کیا.
اچھا
اپنا خود.
چلو بہت اچھا ہوا. اور اب عید کے موقع پر ہمارے سننے والوں کو جو کچھ آپ نے اپنے سوشل میڈیا پر سنایا, تو ظاہر ہے کہ نئی چیز تو آپ نے کچھ نہیں بنائی, تو وہی کچھ ہمارے سننے والوں کو اس وقت جو
نہیں 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 میں نے نیا سانگ بنایا ہے بالکل.
اچھا
میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہاں 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 میں نے ایک بڑا خوبصورت سانگ ہے کسی میرے, ایک تو سرائکی ہے اور ایک اردو ہے, کسی میرے ڈھولے نو تاویز پا چھوڑے نے. مطلب میری بندی یا میرا بندہ جو ہے نا وہ بس کسی کے چکر میں آ گیا ہے تو مجھے ٹائم نہیں دے رہا, تو اسی بیس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ سانگ خوبصورت بنایا. لکھا جو ہے جی ہاں وہ یہاں پہ عتیق ہیں, عتیق صاحب نا, انہوں نے اس کو لکھا اور کمپوز ان کو ہمارے بہت ہی اچھے علی حیدر صاحب ہیں لاہور کے. علی حیدر ماشاء اللہ پورے پاکستان ہی نہیں صرف انڈیا میں بھی وہ ون کر کے آئے ہوئے ہیں, تو انہوں نے یہ میرا گانا کمپوز کیا ہے. آپ میری گزارش ہے کہ جتنے بھی سن رہے ہیں اور اس سانگ کو جو ہے یوٹیوب پہ بھی جا کے اس کی ویڈیو بھی دیکھے, بڑی اچھی ہے.
اچھا اچھا.
اور اس کے ساتھ سیکنڈ میرا گانا تھا کہ جس طرح لڑکیوں کے ساتھ لائک ہوتا ہے نا کہ لڑکیاں بہت ساری چیزوں کو فیس کرتے ہوئے جو ہے نا مطلب سب کچھ سامنے تو نہیں بول رہی ہوتی ہیں لیکن بہت سارے رنگ میں ڈھل چکی ہوتی ہیں, تو اکثر کتنے اتر گئے مجھ میں پھر نہ جانے کتر گئے مجھ میں, مطلب جن کو میں نے اپنا مانا وہی لوگ دھوکا دے گئے, پتہ نہیں نظر ہی نہیں آتے ہیں مجھ میں, مجھ میں میرے ہی لوگ نظر نہیں آتے ہیں. تو یہ بڑا خوبصورت سانگ ہے. دوسرا اکثر کتنے ہی اتر گئے مجھ میں پھر نہ جانے کدھر گئے مجھ میں, تو انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے جب میں سناؤں گی.
تو تھوڑا سا سنا کر سنائیے. اور یہ نغمہ کس نے لکھا اور کس نے کمپوز کیا؟
یہ عمران صاحب ہیں, وہ اے آر وائی کے ڈرامے لکھتے ہیں ماشاء اللہ, عمران بھٹی صاحب نا, عمران بھٹی صاحب ان کا نیم ہے اور بہت ہی خوبصورت انہوں نے یہ سانگ لکھا ہے, بہت اعلیٰ. اور کمپوز کیا ہے کاشف علی نے, انہوں نے بھی بہت اچھا کمپوز کیا ہے.
پہلا نغمہ سنائیے اس کے بعد سے دوسرا. جی تعویذ سنائیے.
جی جی میں آپ کو. اوکے اوکے. سندا نہیں گل میری مندا نہیں گل میری سندا نہیں گل میری مندا نہیں گل میری سندا نہیں گل میری مندا نہیں گل میری ہاتھ بھی میں جوڑے نہیں کسے میرے ڈھولے نو تاوی زبا چھوڑے نے کسے میرے ڈھولے نو تاوی زبا چھوڑے نے کسے میرے مائیے نو تاویز پا چھوڑے نے.
بہت اچھے بہت اچھے.
تو یہ بڑا اچھا سا سانگ ہے. اور وہ جو دوسرا سانگ ہے اس کی میں آپ کو بڑا میرا خود کا بھی فیورٹ سانگ ہے وہ
سنائیے.
وہ سنا چاہیں گی آپ؟
ہاں ضرور دونوں سنا دیں.
عکس کتنے ہی اتر گئے مجھ میں پھر نہ جانے کدھر گئے مجھ میں بن کے اتری ہوں میں جن سے گرا ہوں پھر اندھیرے ہی بھر گئے مجھ میں عکس کتنے ہی اتر گئے مجھ میں.
واہ واہ بہت اچھی. شکریہ آسما
راجپوت.
بہت شکریہ.
مجھے 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 خوشی ہے کہ میں آپ کے اس پروگرام میں اس پروگرام کی پارٹ بنی ہوں, اس پروگرام کا حصہ بنی ہوں. مجھے خوشی ہے. تھینک یو سو مچ.
دنیا بھر سے اہم خبروں, دلچسپ معلومات اور ویڈیوز کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر, facebook.com/urdubhoa اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر @urdubhoa پر ہمیں فالو کیجیے.
تازہ ترین خبریں, اہم واقعات, آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
سوشل میڈیا پر غیر مستند خبروں کی روک تھام کے لیے اب دباؤ بڑھ رہا ہے. تاہم اس میڈیا کو کچھ لوگوں نے کووڈ 19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مستند معلومات فراہم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا, خاص طور پر مزاحیہ شاعری اور میوزک کے امتزاج کے ساتھ. اس وقت ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے ہی پروفیسر سے کرا رہے ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا کو اسی طریقے سے استعمال کیا. نام ہے ان کا حسیب عالم خان, جو راولپنڈی سے اس وقت ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ ہیں. تو ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم حسیب عالم خان صاحب.
جی وعلیکم السلام. جی حسیب عالم خان.
حسیب عالم خان آپ راولپنڈی سے ہمارے ساتھ ہیں اور فنکوم کالج میں آپ بزنس اور اکنامکس پڑھاتے ہیں, اور آپ نے سرحد یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا تھا بزنس ایڈمنسٹریشن میں, اور 20 سال سے آپ اسی شعبے سے وابستہ ہیں, اور اس وقت فنکوم کالج راولپنڈی میں بورڈ آف ڈائریکٹر میں بھی شامل ہیں. تو کچھ بتائیے کہ جو میں نے اتنا لمبا تعارف کرایا ہے وہ میں نے کیوں کرایا ہے, اب ہمارے سننے والوں کو بتائیے.
میرا شوق تھا بچپن کا, جو میں بچپن سے ہی گانے گاتا تھا سنتا تھا, تو میرے دوستوں نے اپریشیٹ کیا اور اس کے بعد پھر میں اس کو ایسے سنگنگ بھی کرنے لگ گیا, اور میں باقاعدہ اس کو گاتا بھی ہوں. اب اپنا چینل ہے میرا حسیب عالم خان کے نام سے یوٹیوب پر, کیونکہ یہ کرونا ایک بہت بڑی وبا ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. تو اس سٹریس میں لوگوں کو اس ڈپریشن سے میں نکالنے کے لیے ہم اگر اپنی کنٹریبیوشن یا میں اپنی کنٹریبیوشن کو دے سکتا ہوں تو میں شکر گزار ہوں گا سی آر وائسز کا, کہ سی آر وائسز کو کہا کہ انہوں نے مجھے ایک چانس دیا کہ ہم بھی اس میں اپنا کنٹریبیوشن پیش کر سکے, ایک لائٹ موڈ میں اور ایک ہیپی موڈ میں, اور ایک اویئرنیس لوگوں کو دے سکیں کہ اس طرح ہم اس وبا سے بچ بھی سکتے ہیں, اور اس وبا میں ہونے والی جو پرابلمس آ رہی ہیں, جو گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, اس سے ہم کیسے دور رہ سکتے ہیں, بچ سکتے ہیں. یہ ایک چینل ہے یوٹیوب کا کرونیکل وائسز کا, جس میں لوگ اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں, کسی بھی ایشوز پر بات کر سکتے ہیں, چاہے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹ ہو, چاہے وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ فارمر سے ریلیٹڈ ہو, کسی بھی قسم کا ایشو جس میں لوگ بات نہیں کر سکتے, ان کو ایک پلیٹ فارم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی رائے اس چینل کے تھرو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. تو اسی طرح یہ بھی میرے بھی یہی کنٹریبیوشن تھا اس میں.
تو اس چینل کے ذریعے آپ نے یہ ایک کرونا کے بارے میں ایک جو شاعری کی آفتاب عالم خان کی یہ شاعری ہے جو آپ کے بھائی ہیں وہ شاعری کرتے ہیں اور آپ ان کو نغمے کی شکل دے دیتے ہیں اور اس کی دھن بھی کسی نہ کسی گانے پر نغمے پر بناتے ہیں یا الگ سے بھی دھنے بنا لیتے ہیں آپ؟
جی میں چونکہ دھنے تو ایز اچ میں نے اپنے کچھ گانے بنائے ہیں لیکن میں نے ابھی تک اس کو پبلکلی اس کو لانچ نہیں کیا ہوا.
اچھا.
وہ میرے تک ہی محدود ہیں لیکن یہ جو تھا یہ ایک ٹون تھی جو گانے کی تھی اسی گانے پر ہی یہ گانا بنایا گیا.
اچھا.
تو ہم نے اسی گانے کے اندر آپ لیرکس اگر دیکھیں تو اس میں یہی بتایا گیا کہ آپ کس طرح اس وبا سے بچ سکتے ہیں اور اس وبا سے بچنے کا ایک ہی حل ہے کہ آپ اپنے آپ کو صاف رکھیں, اپنے ہینڈ واش رکھیں, لوگوں سے سوشل ڈسٹینس رکھیں, اور اسی گانے میں یہ میسج بھی کنوے کیا گیا ہے. تو اسی لیے ہم نے یہ کنٹریبیوشن ایز اے لائٹ موڈ میں میوزک کی فارم میں لوگوں تک پیش کیا اور مجھے بڑی شکر گزار ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے اس کو سنا اور اپریشیٹ کیا.
تو چلیے
یہ جو کرونا ہے اس کا ہی رونا ہے اور ہاتھوں کو اپنے بس دھونا ہی دھونا ہے گھر بیٹھے کرونا کو کرنا ہے برباد سب سے 2 میٹر رہنا ہے دور سب کو سلام سب سے 2 میٹر رہنا ہے دور دور ہی سے سب کو سلام سیکنڈ ہاتھوں کو تو باری باری کھولے میرے خدا پانی والا بھی تو پانی کھولے 20 سیکنڈ ہاتھوں کو تو باری باری دھولے میرے خدا پانی والا بھی تو پانی کھولے پانی نہ ہو تو کیا ہو انجام یہ جو کرونا کرنا ہے برباد سب سے 2 میٹر رہنا ہے دور دور ہی سے سب کو سلام سب سے 2 میٹر رہنا ہے دور دور ہی سے سب کو سلام باتیں کرنا یاروں غصے میں تم بیوی بچوں سے نہ لڑنا سب کاموں میں ہاتھ بٹانا اچھی باتیں کرنا یاروں غصے میں تم بیوی بچوں سے نہ لڑنا گھر ٹوٹ جائے تو کیا ہو انجام یہ جو کرونا ہے بس دھونا ہی دھونا ہے گھر بیٹھے کرونا کو کرنا ہے برباد سب سے 2 میٹر رہنا ہے دور دور ہی سے سب کو سلام سب سے 2 میٹر رہنا ہے دور دور ہی سے سب کو سلام سے تم یارو اس آفت سے لڑنا بھوکا کوئی مل جائے تو اس کا بھی دم بھرنا
صبر و ہمت سے تم یارو اس آفت سے لڑنا بھوکا کوئی مل جائے تو اس کا بھی دم بھرنا احساس نہ ہو تو کیا ہو انجام یہ جو کرونا ہے اس کا ہی رونا ہے ارے ہاتھوں کو اپنے بس دھونا ہی دھونا ہے گھر بیٹھے کرونا کو کرنا ہے
بہت خوب بہت خوب میسج آپ نے دیا لوگوں کو کہ اس کو سیریسلی لیں اور اس سے یہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ آپ خود کو کرونا سے بچا سکیں.
میں کہہ رہا ہوں دیکھیں یہ وبا ہے جس نے انسانوں کی جانوں پر کتنے لوگ مر چکے ہیں لیکن ابھی بھی لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے تو اس کو کم از کم یہ ضرور سوچنا چاہیے.
بہت شکریہ بہت شکریہ پروفیسر حسیب عالم خان آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آپ فنکام کالج راولپنڈی میں بزنس اور اکنامکس کے پروفیسر ہیں اور اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بھی شامل ہیں. آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا, آپ کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.